ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। भारत के साथ मौजूदा सीमा विवाद का कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर समाधान किया जाएगा, संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा का कथन। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकांत कोना ललितपुर के तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनंद केसरी पोखरेल सहित 38 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार ने किया विशेष अदालत में मामला दर्ज। और इराक में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के क्रम में आज सुरक्षा कर्मी की गोली से कम 5 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर भारत के साथ जो भी सीमा विवाद है उसका समाधान कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास से करेंगे। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की द्वारा आज पोखरा में आयोजित पत्रकार भेंटघाट में मंत्री बासकोटा ने कहा कि लिम्पी अधूरा, लिपु लेख और कालापानी के साथ ही सुस्ता लगायत नेपाल की भूमि रक्षा के लिए सरकार दृढ़ता और ईमानदारी के साथ पहल कर रही है। साथ ही इसके लिए सरकार कूटनीतिक नोट भारत को भेज चुकी है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने यातायात व्यवस्था कार्यालय एकांत कोना ललितपुर से सवारी चालक अनुमति परीक्षा में फेल हुए 1284 लोगों को पास कर गैरकानूनी लाभ लिए होने के अभियोग में तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एवं उपसचिव आनंद केसरी पोखरेल सहित 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके विरुद्ध कैद और जुर्माना की मांग सहित विशेष अदालत काठमांडू में केस दर्ज किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोयराला ने बयान के जरिए दी। जारी किए गए बयान के मुताबिक तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनंद केसरी पोखरेल, डीएसपी नवराज थापा, शाखा अधिकृत राममणि पोखरेल, ईश्वर राज रेग्मी, शंभू थपलिया, उपसचिव धर्मराज ढुंगाना और बाबूराम रेग्मी लगायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मार्ग शीर्ष 14 गते होने वाले उपचुनाव के लिए मतपत्र और मतदाता परिचय पत्र लगायत संपूर्ण निर्वाचन सामग्री सभी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयों में पहुंचाया जा चुका है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने कहा कि प्रगति हासिल करने के हिसाब से आगे बढ़ने का मंत्रालय और मातहत के निकायों के पदाधिकारियों को आगे बढ़ना होगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आज हुई मंत्रालय स्तरीय प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति की बैठक में मंत्री बासकोटा ने ऐसा निर्देश दिया। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय में दीर्घकालीन विकास स्रोत केंद्र की स्थापना की गई है। स्रोत केंद्र का आज उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने कहा कि अगर तीनों तहों की सरकार एकीकृत तरीके से योजना बनाकर दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करेगी तो तय समय में ही लक्ष्य हासिल हो पाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल अपना एक इंच भूमि नहीं छोड़ेगा। सरलाही में आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रवक्ता श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल की भूमि वापस करने, उस क्षेत्र से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए और औपचारिक तौर से भारत से वार्ता करने के लिए सरकार पत्र भेज चुकी है। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के अध्यक्ष मंडल के संयोजक राजेंद्र महतो ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ तत्काल पार्टी एकता करने की संभावना नहीं है। आज सिरहा में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए संयोजक महतो ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर नहीं हुई है, इसलिए एकता की कोई संभावना नहीं है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा की घटना में कमी आई है, ऐसा एक तथ्यांक में पाया गया है। कल से शुरू होने जा रहे महिला हिंसा के विरुद्ध 16 दिनों का अभियान की पूर्व संध्या में आज काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बात की जानकारी दी। फ्रीडम फोरम ने इस साल की पत्रकारिता पुरस्कार से विभिन्न पत्रकारों को सम्मानित किया है। आज ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनूप राज शर्मा ने कहा कि नेपाल में संवैधानिक और कानूनी रूप से प्रेस स्वतंत्रता की प्रत्याभूति भले ही की गई है, लेकिन व्यावहारिक पक्षों में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहू की शुक्ला गंडकी नगर पालिका 4 दूल्हे गौडा में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले मकवानपुर के फिलहाल शुक्ला गंडकी नगर पालिका 5 बेल चौतारा रहने वाले 60 वर्षीय सोम बहादुर तामांग है। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय तनहू ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इराक में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के क्रम में आज सुरक्षाकर्मी की गोली से कम 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का विरोध करते हुए सर्वसुलभ सेवा की मांग के साथ बीते अक्टूबर से इराक में जन प्रदर्शन शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों में अब तक 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। भारत के साथ मौजूदा सीमा समस्या का कूटनैतिक और राजनीतिक तौर पर समाधान किया जाएगा, संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा का कथन। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकांत कुना ललितपुर के तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनंद केसरी पोखरेल सहित 38 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार ने किया विशेष अदालत में मामला दर्ज। और इराक में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के क्रम में आज सुरक्षाकर्मी की गोली से कम 5 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभ रात्रि।